وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور جب عورتوں سے تم نکاح کرو تو وہ چیز جو ہمارے ہاں سب سے پیچھے رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا صدقاتهن نحلہ، ان کے جو مہر ہیں ان کو نحلہ، نحلہ بڑا اگر کوئی بچی کا نام بھی ہو تو بڑا اچھا ہے، اسی طرح اس آیت میں حنیہ، یہ بھی بچیوں کے نام بہت اچھا ہے، کہ خوش دلی سے دو، خوش دلی کے ساتھ ان کے مہر دو، یعنی پھر جو مہر ہے یہ عورت کا حق ہے، اور اس کے اندر بھی ڈنڈی نہ مارو، اس کے اندر بھی مہر کو ادا کرتے ہوئے بخل نہ کرو، یعنی آج جو مہر جیسے رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو شرعی مہر ہے، مطلب شرعی مہر کون سا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کہاں سے نکالا اس کا شرعی مہر کا یہ لفظ، اور کیسے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیویوں کا مہر بالکل بھی 32 روپے اور 4 آنے یہ نہیں رکھا تھا، 32 روپے فقیر بھی نہیں لیتا آج، تو وہ اتنے مہر رکھ کے، اور کتنی بری یہ بات ہے، جتنا بھی مہر رکھیں کم سے کم رکھیں یا جتنا بھی زیادہ رکھیں وہ کسی کی مرضی، اس کی حیثیت اتنی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو کہنا یہ شرعی مہر ہے، یعنی دین کا مذاق اڑانا ہی ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے، جبکہ ایک عورت کی جوتی جو اس نے پیر میں پہنی ہوتی ہے اور سسرال والے لے کر آتے ہیں وہ بھی 1000 روپے کی ہوتی ہے، اور مہر کے وقت جس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کو کہا صدقات، اور صدقات سے مراد ایک جگہ تفسیر میں آیا فریضہ، یہ فریضہ ہے، اب فریضے کو کیا کرنا، جس کو کہا گیا اس کو خوش دلی سے دو، اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے آج یہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کا ولی اس کا مہر نہیں رکھ سکتا، مثلا بعض ہمارے معاشروں میں اس طرح کے بھی رواج ہیں کہ باپ جو ہے وہ مہر مقرر کر کے اور اس کے بعد وہ اس مہر کو رکھتا ہے، لڑکی کو تو نہیں دیا جاتا، یعنی سمجھنے ایک طرح سے اپنی بیٹی بیچ دی کہ وہ رکھ دی، اب باپ نے اپنی ملکیت میں لے لیا، یہ تو عورت کا حق تھا، اور پھر اس کو جیسے مرضی باپ نے ہی استعمال کیا اس مہر کو، مہر کی رقم کو، اور وہ اس لیے بڑے بڑے مہر لگانا چاہتا ہے کیونکہ کل کو یہ مہر تو اس نے ہی استعمال کرنی ہے نا، تو یہ بھی ایک بری بات ہے، کیونکہ یہ کہا گیا یہ عورت کا حق ہے، صدقات سچائی سے، صدق سے ہے نا، صدق سے کیا اس کا تعلق ہے، یعنی آدمی جو ہے اپنا صدق اس سے شو کرتا ہے کہ میں سنسیئر ہوں اس کے ساتھ اور میں اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، اور یہ سمجھ لیں ایک ویڈنگ گفٹ ہے، ایک ویڈنگ گفٹ ہے، یہ وہ عورت سے کبھی واپس نہیں لے سکتا ایسے کہ اس کو زبردستی کرے اب میں نے تمہیں مہر دے دیا اب یہ واپس کرو مجھے، نہیں، ہاں فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسی چیز میں سے دینا چاہے، جتنا مہر ان کو دیا ہوا ہے ان میں سے کچھ دینا چاہے، مثلا اس کو زیور کہہ دیا تھا یہی اس کا مہر ہے، اب وہ اس میں سے ایک سیٹ آدمی کو کہتے ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ کے نا اپنے بزنس میں لگا لیں، وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہے خود سے، نفسن خود سے، فکولو ہنی مریا، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے، پھر آدمی کو کھا گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر تم خوش مزہ ہو کے خوشگوار، یعنی ہنیا جو ہے وہ یعنی خوش ذائقہ مزیدار اس طرح کا خوشگوار اس کے لیے آتا ہے، اور مریا یعنی جب کھانا کھا کے اس کے بعد بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کلو سے ہے نا، اس کا مطلب لٹرلی کھانا نہیں ہے، مطلب مال کھانا بھی تو کرتا ہے نا، اصل میں انسان اپنا زیادہ مال کھانے پینے پہ خرچ کرتا ہے اس لیے اس کو کلو کہہ دیا گیا، ورنہ مال ویسے بھی ہم کہتے ہیں اس نے اس کا مال کھا لیا تو وہ ایسے نہیں منہ میں ڈال لیا، مطلب یہ کہ یعنی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، اور اس کے بعد بھی مریعہ یعنی اس کے بعد بھی غیر مضر، زود ہضم جس کو کہیں گے، وہ جو کھانا ہے وہ بعد میں بھی تکلیف نہ دے، کہ بعد میں بھی کوئی تانے یا کوئی باتیں نہ سنائی جائیں، پھر تم کھا سکتے ہو، اب کیا مطلب اس کا ہوا کہ ایک تو ہمیں یہاں پہ مہر کی اہمیت پتہ چلی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ مہر ادا کرنا خوش دلی سے ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا رکھا جاتا ہے، ہم جہالت میں ابھی بھی رہ رہے ہیں نا، جہالت والے بھی اس معاملے میں تو اچھے تھے، وہ مہر پھر بھی دیتے تھے، عورتیں اپنے مہر رکھواتی تھیں جس جیسا کسی کی حیثیت ہوتی تھی اس کے مطابق، ہمارے یہاں بس وہ لکھا جاتا ہے، اور ساتھ بھی بڑے دھڑلے سے بغیر کسی شرم کے کہتے ہیں इतना लिख दें जी, देना किसने है? सुना है आपने ये कभी? लिख दो इतना देना किसने है बाद में? कुछ नहीं दिया जाता। और अगर कभी औरत मांग ले तो कहते तुम इतनी लालची हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगते में? आदमी कहता है लो आज तक जो तुम्हारे पर खर्चा किया है वो क्या था, अब तुम मेहर मांग रही हो। आज तुम्हें इतना, आज सैरें कराई, फलां लेके जगह लेका लेके गए, ये इतने मैंने तुम्हें गिफ्ट्स दिए। वो गिफ्ट अपनी जगह है, जो अल्लाह ने मेहर का कहा वो देना जरूरी है, जो खिलाया पिलाया सैरे कराई वो अपनी जगह है। और यहां से पता चलता है कोई भी गिफ्ट आप वापिस नहीं ले सकते। आपको पता है हदीस में आता है आदमी ने कितना मर्जी दिया हुआ औरत को, हदीस में आता है कि कोई तोहफा देकर भी वापिस लेना इसकी मिसाल इतनी गंदी है ना कि आपको सुन के भी कराहत आएगी, जैसे कुत्ता अपनी वॉमिट को चाट ले ऐसे है, कुत्ता अपनी वॉमिट को चाट ले इस तरह है तोहफा दे के वापस लेना। हमारे तो मंगनियां टूट जाए, वापस दो जो हमने आपको दिया था, शादी खत्म हो जाए वापस लो इससे सारा जो इसको हमने डाला था, जो तोहफे दिए थे वो भी वापस करो हमें, नहीं। हाँ एक चीज है कि मेहर अगर कोई औरत अपनी मर्जी से कहे कि मैं ठीक है जी ये इतना आप रख ले, उसको दे दिया वो कह रही है कि चलो मैं अपने हस्बैंड को इतना माफ कर देती, चलो ये अपने इस वक्त इसको जरूरत है ये अपने कारोबार में लगा ले, चलो इसको मैं खुशी से अपनी खुशी से मैं देती हूँ, चलो कोई नहीं, तो वो अलग बात है, वो फिर वो वापस ले सकता, वो इसमें नहीं आएगा। फिर वो ये नहीं कहे कि हाय नहीं ये तो मैंने हदीस सुनी है तो इसलिए नहीं, नहीं। हाँ वैसे बाकी तोहफे वापिस लेना वो इस तरह उनकी मिसाल है। एक हाँ मेहर एग्जम्प्टेड है इससे, इतना इतनी बात में कि वो खुशी से दे रही है, कोई उसको जबर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जैसे अगर कोई आदमी मेहर अदा किए बगैर मर जाता है तो वो मेहर उसके ऊपर कर्ज है, वो मकरूज मरा है, उस वक्त खड़े कर देते हैं औरत को, तुम माफ कर दो अपने हस्बैंड को, वो बेचारी अब क्या करे इस वक्त, वो कहती है हाँ मैंने माफ ही कर दी, अब जो कोई चीज मिलनी नहीं तो माफ ही करना है, तो वो भी कह देती है मैंने माफ कर दी, अब उसको प्रेशराइज इतना कर रहे हैं तो क्या करेगी। तो यहां से पता चला कि मेहर इज इम्पोर्टेंट, और मेहर देना खुश दिली से होना चाहिए, एहसान जता के नहीं, ये लो पकड़ो तुमने मांगा था, ये तो गिफ्ट है। और ये गिफ्ट ऐसा है ना कि खुदा ना खास्ता आदमी फौत हो जाता है या उसने तलाक दे दी, तो कम से कम इस औरत के पास इतना होना चाहिए कि ये अपनी कुछ दिन तो गुजार सके, अपना कुछ गुजारा तो कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मेहर रखा अपनी बीवियों का, आप हैरान होंगे नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रिच नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत रेल पेल थी पैसों में, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मेहर के बारे में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मुस्लिम में रिवायत है, किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मेहर मुकर करते थे, तो फरमाती हैं आपकी अजवाज का मेहर 12 ओकिया और निश होता था। फरमाया तुम जानते हो निश क्या है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। फरमाया निस्फ ओकिया, तो ये 500 दिरम बनते हैं चांदी के, यानी कॉइन्स होते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मेहर था। और आज के उसमें कैलकुलेट किया गया है तो 131.5 तोला बनता है ये चांदी, तब आप खुद सोच लें चांदी आज कितने तोले की है, और 131 तोले कितने बनेंगे। तो कोई देखना भी चाहिए, हजरत उम्मे हबीबा जो थी इनका मेहर नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके और 4,000 दिरम रखा था, 4,000 1,052 तोला बनता है ये, इतना बड़ा मेहर था इनका। हाँ किसी आदमी की नहीं है हैसियत तो वो उसके मुताबिक कर ले, लेकिन आज क्या मुझे किसी का पता चला उन्हें का बहुत जी उसकी शोहरत हो रही है, उस औरत ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई फरहान सूरत याद कर लो यही मेरा मेहर है। क्यों क्यों? अब उसमें कहते हैं नहीं वो सहाबी भी तो थे ना, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास कुछ नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें फरहान फरहान सूरत याद है, उन्होंने कहा हाँ, तो आपने फरमाया अच्छा तुम वो कुरान तुम्हें इतना याद है ना बस, तुम ये औरत तुम इस मेहर पे ही तुम्हारे साथ निकाह करता हूँ इसका। तो वो इसलिए कि उन सहाबी वो ऐसे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा घर से जाके लोहे की एक अंगूठी ले आओ, उन्होंने कहा वो भी नहीं है मेरे पास, बस मेरे पास ये चादर है तो जो मैंने अपने ऊपर तहबंद है जो मेरा, तो आपने फरमाया इसका वो क्या करेगी, तुम इसको पहनोगे तो उसके पास कुछ नहीं होगा, अगर वो पहनेगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तो क्या इसका फायदा। यानी उसकी तो मिल्कियत ना हुआ ना, ये मेहर तो इसको देना है। तो जब कुछ भी नहीं मिला तो तब ये फरमाया। अब आप एक्स्ट्रावगेंट शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, 300 लोगों का आपने खाना खिलाया है, आप पता नहीं क्या क्या खुराफात पे भी स्पेंड कर रहे हैं, और मेहर आपने क्या रखा हुआ, बस एक सूरत याद कर ली है। नहीं, मेहर एक गिफ्ट है, एक माली उसकी कोई वो होनी चाहिए, जो अगर वो आदमी मालदार है तो उसके मुताबिक उसको दे। हाँ, सूरतें भी याद करा रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन ये ना करें कि अच्छा इसकी जान छुड़ाने के लिए वो आदमी भी कहे मेरी भी जान छूटे, चलो सूरत ही याद करके इसको सर से उतारो। या मेहर देने में ही हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जबकि कहा गया वो सिर्फ देना नहीं है, नेहला है, और उसको फरीजा कहा गया। लेकिन हम हर जगह खर्च करते हैं, आप देखें बरियां कितनी महंगी और क्या क्या किस किस तरह की होती है, लेकिन जो हम मेहर देना है वहां पे मसला है। और जो लोग मेहर लिखवाते भी हैं, बड़े बड़े मेहर, उनका भी क्या होता है, ताकि अनाउंसमेंट जब हो कि इतने मेहर के एवज इसकी निकाह से किया जाता है, तो लोगों को पता लगे कि हमने इतने लाख मेहर रखवाया। ऐसे नहीं होता, और बाद में कौन दे रहा होता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि अगर एट द स्पॉट आप नहीं दे सकते, यानी वैसे तो निकाह के फौरन बाद देना चाहिए, नहीं दे सकते तो मेहरे मुअज्जल होता है, यानी उसकी भी एक अजल मुकर्रर होनी चाहिए, उसका भी एक टाइम होना चाहिए कि उस वक्त उसको इस टाइम तक मैं किस्तों में करके दे दूंगा, या इस टाइम तक मैं, आज 50,000 है तो 25 आज दे दिए, 25 उस वक्त दे दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि ओपन एंडेड ही है, ओ भाई देना ही नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला मजाक है ना अल्लाह ताला के अहकामात का। और लड़कियों को भी नहीं पता होता क्योंकि मेहर क्या चीज है। तो ये बता दिया गया कि अगर वो औरत देती है तो फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, इससे यहाँ पे पता चला ना कि औरत की भी अपनी, औरत अपनी पोजेशन में माल रख सकती है, वो जॉब करती है, या उसका मेहर है, या उसके जो तोहफे तहाये दिए गए हैं वो उसकी पोजेशन होगी। आदमी को ये नहीं इजाजत है कि मेरी बीवी है ना, जो मर्जी मैं करूं, नहीं, वो भी उसकी इजाजत से, जैसे हदीस में आता है किसी इंसान का माल हलाल नहीं है मगर उसके दिल की खुशी से। अगर तो पता है ना कि हाँ कोई बात नहीं है, अब आपको पता है कई चीजें हैं, आपको पता है आप अपने हस्बैंड से भी उसकी भी यूज कर लेते हैं, या उसके पैसे उतने ले लेते हैं, आपको पता है वो इस पे माइंड नहीं करेगा, या आदमी है तो उसको पता है मेरी औरत इसके ऊपर, उसको कुछ नहीं है, मुझे इजाजत इसने दी भी है, वो एक अलग बात। लेकिन उसके माल से नाहक ऐसे लेते रहना जबकि पता है ये नहीं देगी खुशी के साथ इसको, हल अल इल्ला ये कि मैं मजबूर कर दूं, ये करना ये सही नहीं है, ये किसी के साथ भी सही नहीं। हदीस में तो ओपन है ना, किसी इंसान का माल भी हलाल नहीं है मगर उसकी दिल की खुशी के साथ। मसलन आप बच्चों को भी ना शुरू से ये सिखाना चाहिए, बच्चों की अक्सर क्यों लड़ाइयां होती हैं, इसने मेरी ये चीज ले ली, उसने मेरी ये चीज उठा ली, उसने मेरी ये चीज पहन ली, तो नहीं, उसकी इजाजत के साथ और खुशी के साथ लो फिर ठीक है। हम कहते हैं कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, वो ठीक है आप उसको समझाएं कि देने में अच्छी बात है, आप दिल को बड़ा करें, लेकिन दूसरे को भी ये समझाएं कि आप इजाजत के बगैर नहीं किसी की चीज लें, चीजें उसकी इजाजत से लेनी चाहिए। और जब वो अगर दे दे अपनी दिल की खुशी के साथ औरत, तो फिर आप खुशी से खाओ, खुशी से ले सकते हो, फिर कोई झिझक की जरूरत नहीं। वो मोहब्बत से दे रही है तो फिर आप भी मोहब्बत से ले लें, और लेने के बाद मरी आ खुशगवार ही रहे, ये ना हो कि तबीयत बोझल हो जाए लेने के बाद, औरत ने ताना मार दिया, देखा मैंने उस वक्त ये दिया था, या आदमी ने कह दिया कि अगर मैंने ले लिया तो क्या, तुमने दे दिया तो क्या बड़ा एहसान कर दिया तुमने, और मेरा तो ये हक ही है, और हाँ मुझे कोई ऐसी जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने कहा चलो इसका दिल रखने के लिए ले रहा। तो बाज दफा लोग तोहफा भी कबूल ऐसे करते हैं कि इंसान का दिल खराब हो जाए। तोहफा जब कोई दे अपनी दिल की खुशी के साथ तो उसको दिल की खुशी के साथ ही ले, अब उसको मुंह पे मार मार के पैसे मुझे जरूरत तो नहीं है लेकिन चलो तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेती हूँ, अब तुम लाई ही हो तो फिर अब ले लेती हूँ, वैसे मुझे तो नहीं चाहिए था, अब इससे दूसरे का दिल कितना खराब होगा। वला तू सफहा वालकुम अल्लती जाल अल्लाहु लकुम कियामन, और बेवकूफों को माल ना दो, जिन जिन जिस माल के ऊपर तुम्हारी जिंदगी का कयाम है वो माल बेवकूफों के हाथ में ना दे दिया करो। अब इसके अंदर बड़ी हमें हिकमत सिखाई गई है, देखिए जो माल है ना, जो पैसा है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को यूज करते वक्त इंसान को ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना दे दे कि जो मसलन बच्चे हैं। तो सुफहा यहाँ पे कौन है? सुफहा से मुराद असल में वो है जिनकी जिनकी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, चाहे वो भी बहुत यंग है, इस वजह से नहीं अकल, या वैसे ही बाज़ कई लोग बड़े भी हो जाते हैं तो समझ होती ही नहीं है उनके अंदर। तो उनके हाथ में ना दे दो कि वो उसको जाया कर बैठे, क्योंकि इस माल के ऊपर क्या है, तुम्हारी जिंदगी का कयाम है, तुम्हारी जरूरियात पूरी करने का जरिया है। तो कोई मजनून है या दीवाना है या वो मेंटली सही नहीं है या वो नाबालिग है या वो वैसे ही बड़ा भी हो गया तो तब भी उसको कुछ समझ नहीं है, उनके हाथों में माल लुटाने के लिए ना दे दो। जैसे एक दफा किसी ने बहुत फखर से कहा कि मैंने तो अपने बच्चों को इतने हजार बसंत पे ये पतंगे लेने के लिए मैंने इतने हजार दे दिए उनको, इतने हजार मैंने उनको ये फायरवर्क्स आतिशबाजी के लिए दे दिए। अब ये क्या है? ये माल को लुटाना है, ये माल को जाया करना है। तो आदमियों से कहा गया कि तुम्हारी ये जिंदगी के कयाम का जरिया, यानी इंसान जो इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है उसमें बहुत सारी उसके साथ जरूरियात लगेंगी, ये पूरी इस माल के जरिए होती है। इसी तरह नेकी के कई चीजें हैं वो इस माल से ही होती है, नेकी के भी कई काम इसी माल से करेंगे ना। तो इससे कयाम क्या है? खड़े होना, ठीक है? तो जिंदगी इसकी बेस पे खड़ी होती है। तो माल अल्लाह की नेमत समझ के इसी कदर करो, इस माल को ऐसे उड़ाया नहीं जाता कि फूंक रहे हैं कहीं फायरवर्क्स पे, फूंक रहे हैं कहीं ऐसी डेकोरेशन पे जो चंद मिनट की है, फूंक रहे हैं कहीं ऐसे कपड़ों के ऊपर जो जरा देर के लिए पहनने, फूंक रहे हैं ऐसे बाजे गाजों में जिनका कोई फायदा नहीं है, या उड़ा रहे हैं बस ऐसे ही फजूल ही उड़ाए जा रहे हैं। देखिए कोई चीज है वो उसको चीज को सिर्फ इसलिए लिया कि बस कोई देखा ही नहीं कि हाँ और भी कोई चीज इसके साइड पे थी जो कि इसी जैसी है और इसी की क्वालिटी की है, लेकिन बस वो परवाह नहीं है ना। सो वॉट, ओ 10-12 डॉलर ही है, सो वॉट, चलो 50 डॉलर है, सो वॉट, बस उठा उठा के फेंक रहे हैं पैसे को। इसी तरह जब वैसे ही पैसे की ना कदरी करना, इसको उड़ाना, इसको जाया करना, इसकी इतनी सख्त ममानियत है। अल्लाह ताला को जो काम ना पसंद है उनमें से ये, उन कामों में से एक काम ये भी है कि माल को जाया किया जाए। इंसान खुद भी ना कभी जाया करे और ना ही कभी ऐसे हाथों में दे जो कि माल को जाया कर दे। और इनके अंदर खास तौर पे वो बच्चे जो बालिग नहीं है, और इन में जरूरी नहीं कि जो यतीम की ये बात की जा रही है, कोई भी जो अपने औलाद के लिए भी ऐसा है कि इंसान उनके हाथों में मसलन लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां बच्चों को दे देते हैं, बच्चे ने मुंह से बात निकाल ली, अब वो चाहे उल्टी सीधी कोई चीज है, बेकार ही कोई चीज है, अब नहीं लेकर आनी है इसलिए क्योंकि इसने मुंह से जो निकाल दी है बात, तो नहीं। ऐसी चीजें बच्चों को जो इंसान को खुद तो अक्ल होती है ना, तो या उनको ऐसे बड़े बड़े पॉकेट मनीज दे देना, अब वो उड़ाते फिर रहे हैं, पता है इनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, ये इसको जाया करेंगे, लेकिन बस हमारे पास इतना पैसा है कि हमें परवाह ही नहीं है। तो दिन एक जैसे नहीं रहते, इंसान को सोचना चाहिए और अकलमंदी के साथ इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए, कल को मोहताजी भी हो सकती है। ये नहीं कहा जा रहा कि कंजूसी करो, फरमाया उनके बारे में वर्जुकू हम फीहा वक्सूम, उनको खिलाओ पिलाओ उनको पहनाओ वो ठीक है, लेकिन जाया करने के लिए ना दे दो, जरूरियात उनकी पूरी करो, मगर ये कि ऐसे तायुशात। अच्छा बाज लोग घरों के अंदर बिजली चल रही है, पानी चल रहे हैं, लाइटें जली हुई हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, वो तो क्या फर्क पड़ता है, बिल आ भी जाएगा तो क्या हो गया, इसे क्या फर्क पड़ेगा। तो इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये कंजूसी नहीं है, माल को यानी इंटेलिजेंटली खर्च करना, वाइजली खर्च करना, ये कंजूसी नहीं है। कंजूसी वो होती है जब आप इस इंसान उसके अंदर बुखल करता है, जहां पे जायज है वहां पे भी नहीं खर्च करता, मगर इंटेलिजेंटली एक बजटिंग करना या माल को सही से इस्तेमाल करना, ये माल की कदरदानी है। तो उनके हाथों में ना दो। इसके बाद समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है,
तो हम ऐसे ही माल को फेंकते ना फिरे ना खुद और ना ही ऐसे बेअकलों को दे दें। उनको बेचारों को तो कोई समझ नहीं, असल कसूर तो देने वाले का है ना। वकूलू लहुम कौल मारूफा, और फिर अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं, हम बस मिसाल के तौर पे अब उनको, वो तो बेसमझ है, नासमझ है, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमसे ऐसे नहीं है, हमें इतने पैसे नहीं देते, फलां के माँ बाप ने तो इतने दिए, तो कोई बात नहीं, उनके साथ आपने अच्छी भली बात करनी, अपने अखलाक से नहीं गिरना, ठीक है, समझदारी से बात करनी है, उनकी बात को माइंड करके नहीं बैठ जाना, क्योंकि वो तो कम अकल है, और उनको मजाक नहीं उड़ाने शुरू कर देना, तुम तो हो ही पागल, तुम तो हो ही कम अकल, तुम्हारे बारे में ही तो कुरान में ये कहा है कि जो बेअकल है, तो इसलिए तुम बेअकल हो, मैंने नहीं तुम्हें देना, ऐसे नहीं, कौले मारूफ रखना है आपने हमेशा। तो अब यहाँ पे यतीम बच्चे भी हो सकते हैं, अब यतीम बच्चों को भी अगर वो अभी बच्चे हैं, ये लो पकड़ो अपने पैसे, हमसे नहीं तुम्हारी जिम्मेदारियां ली जाती, जाओ जाके जहां मर्जी खर्च करने करो, अब वो जाया कर देगा, उड़ा देगा, कल को बड़ा होगा, अभी तो उसको समझ नहीं है, अकल नहीं है, वो कहीं फेंक आएगा पैसों को, तो कल क्या उसके लिए होगा, तो उसको भी ऐसे ना दे दो, ठीक है, कि हमसे नहीं अब संभाले जाते, हमसे नहीं ये किसी की बातें सुनी जाती, चलो पकड़ो अपने पैसे, नहीं ये नहीं करना। इसी तरह अपने बच्चों के साथ भी नहीं करना। इसी तरह बाज औरतें होती हैं, वो इतनी नादान ना समझ होती हैं कि वो पैसों को उड़ाती फिरती हैं, तो फिर आदमी को देखना चाहिए कि इस औरत के हाथ में भी पैसे देने हैं कि नहीं, क्योंकि वो ऐसा पैसा उड़ाती हैं कि जो पूरे महीने की तनख्वाह थी वो पहले ही खत्म करके बैठ जाती है। तो सफाहत किसी तरह की भी हो सकती है। अब यहाँ पे ना तो बाज तो खैर अच्छे भले बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बेवकूफी होती है कि उनको ये नहीं समझ होती कि हमने किस तरह से पैसे को संभाल के चलना है, और एतदाल का रास्ता कौन सा होता है, कि ना तो इंसान ऐसा करे बुखल के अपने ऊपर भी खर्च करने से जाए, और अल्लाह के रास्ते में भी ना ऐसा खर्च करे कि फकीर ही होके बैठ जाए। कितनी बड़ी तालीम अल्लाह तआला ने दी है ना, ना कि इसमें भी हमें समझाया है अल्लाह अकबर। इस तरह तो माएं भी नहीं बच्चों को समझाती, माएं भी बेटियों को ऐसा समझा के नहीं ससुराल भेजती कि बेटी वहां पे जाके इस तरह से करना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में समझा दिया, यानी इंसान के माल की भी हिफाजत का अल्लाह ताला ने इत्तमाम फरमाया। वबतलुल यतामा हत्ता, और आजमाइश करते रहो, आजमाते रहो यतीमों को, हत्ता इदा बलागुन निकाह, यहाँ तक वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, यानी बालिग हो जाए, जब वो बालिग हो जाएं तो उस वक्त तक उनको, जब उस वक्त उनको आजमाओ। आजमाइश कैसी, मतलब उनको जरा देखते रहो, कोई जिम्मेदारी दे के, कोई छोटे से पैसे दे के, कोई इस तरह से करके कि अब ये कैसे इसको खर्च करते हैं, इनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब ये बालिग हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि कल को ये अपना माल संभाल सके, अगर इनको हम अभी दे दें। फ इन, फिर अगर आनस तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम उनमें समझदारी पाते हो, बाज लोग बच्चे बालिग होते हैं तो समझदार होते हैं, बाज बालिग होते हैं, मसलन 12-13 साल की उम्र में बालिग भी हो गए लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है, तो अगर तुम बलूगत शर्त नहीं है बल्कि बालिग होने के बाद ये शर्त है कि वो समझ बूझ भी रखते हो, फदफाउ इलैहिम अमवालहुम, तो अब उनको उनके माल दे दो, अब उनके हवाले कर दो, क्योंकि अब वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये दोनों शर्तों को आपको नोट करना है, और फदफाऊ का मतलब क्या, पूरे पूरे दे दो, ठीक है। वला तकुलूहा इसराफ व बिदारन अन यकबर, तुम उनको खाओ ना इसराफ के साथ, ये ना हो कि उसका यतीम का माल था तो जल्दी जल्दी ओवर स्पेंडिंग ही कर दी, ब्रांड नेम खरीदते रहे उनसे, चाहे वो बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, देखो मैंने तो इसको इतना अच्छा पहना है, आपको पता है कि नहीं इतनी इसकी जरूरत है, लेकिन इसराफ करते रहे, खुद भी निकाल निकाल के उसमें से इतना स्पेंड कर रहे हैं, इसराफ मत करो, ऐसे अपने माल को संभाल संभाल के रखते हो, और खर्च करते वक्त सोच के खर्च करते हो, इसी तरह होना चाहिए। वह बिदारन अही अकबरू, और जल्दी ना करो कि ये तो बड़े हो जाएंगे, कल को ये बालिग हो जाएगा, हमसे तो सारा चला जाएगा, तो आज ही खा लो जो है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट सिखाई है कि जो इसका यतीम का वली है वो कैसा, उसको उसके मनी को कैसे मैनेज करना है उसको, अब ये भी कौन करेगा बताएं, कोई आके गिनेगा किसी के, किसी ने यतीम के इतने खाए, इसने इतने खाए, 100 रुपया खा लिया के, 20 रुपए खा लिए, कि क्या किया, कोई देखेगा, कौन सी पुलिस देखी, उस बेचारे को तो खुद नहीं पता, वो तो खुद छोटा यतीम वो होता है जो अभी बालिग ना हुआ, बलूगत के बाद कोई यतीम ही नहीं, तो वो बेचारे को क्या पता। अब ये वो कर सकता है जिसमें क्या हो, तकवा, इसीलिए सूरा स्टार्ट ही हुई है तो तकवा के साथ स्टार्ट हुई, तकवा वाले हैं तब तो ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ भी आएंगी और आप करेंगे भी। अगर तकवा नहीं तो फिर सारे ये अहकामात तो ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर और उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, फरमाया वमन कैना गनियन फलयस्ताफिफ, जो गनी है, जो जो खुद मालदार है ना, उसको चाहिए कि वो परहेजगारी से काम ले। यानी क्या मतलब है, यानी वो बंदा इससे मुआवजा ना ले। यानी अब वो इस बच्चे की, यतीम बच्चे की, जाहिर है मनी मैनेजमेंट कर रहा है वो, कोई उसके माँ बाप घर छोड़ के गए हैं, कोई फैक्ट्री छोड़ के गए हैं, कोई दुकान छोड़ के गए हैं, वो उसको मैनेज भी कर रहा है। तो अब इसकी वो उसका टाइम तो लग रहा है ना, वो उसको एफर्ट तो करनी पड़ रही है, तो वो इसकी उजरत ले सकता है या नहीं ले सकता? उसका ये जवाब है, अगर वो मालदार है ना तो वो इससे बचे। वह मन कहना फकीरन फलियाकुल बिलमारूफ, अगर वो फकीर है और खुद मोहताज है, अब वो कहता है अगर मैं इस बच्चे के लिए देखूंगा तो मैं अपना काम किस वक्त किया करूंगा, तो वो उसमें से मारूफ तरीके से, जो भले तरीके से, जो सबके नजदीक है कि हाँ दिस इज फेयर, इतना तो इसका होना ही चाहिए हक, उतना। अल्लाह ताला ने यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं की, ये नहीं बताया इतने परसेंट इतना, सिर्फ ये उसके ऊपर छोड़ दिया जो उस जमाने में जो मारूफ है, जिसको जो भी देखे जो कहे कि ये फेयर है, उतना फिर वो उससे ले ले। मगर वो कौन ले? फकीर। यहां से ये भी पता चलता है एक बात कि जब भी कोई दीन के भी काम हो ना, तो जो गनी है फलियस्ताफे, मसलन मस्जिद के आप कोई काम करते हैं, मसलन है पढ़ाने के, कोई इदारा मैनेज करने के, कोई और चीजों के, अगर आप खुद गनी है ना, तो इससे बेहतर है कि आप उसकी फीस ना लें या आप उसकी तनख्वाह ना लें। हाँ अगर आप खुद मोहताज हैं, इसीलिए जो कुरान पढ़ाते भी हैं, अगर वो उसके फीस ले भी लेते हैं तो कोई हराम नहीं है ये, मगर ये है कि इससे अगर वो अच्छे भले हैं और नहीं उनको जरूरत है तो नहीं लेनी चाहिए। एक और बात मेरे से रह गई यहाँ पे कि पिछली आयत के हवाले से वला तुतु सुफहा अमवालकुम, इससे उलमा ने एक और एक्सट्रैक्ट किया मसला, और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे कहा गया ना बेवकूफों को ना दो तुम अपने माल, इसी तरह बेवकूफों को ऐसी कोई पोजीशन भी ना दो जिसके वो अहल नहीं है। मसलन आज क्या है, सिफारिश अगर है तो फिर आप चाहे कुछ भी नहीं पढ़े हुए और कोई बिल्कुल ही ना अहल भी हो तो वहां पे रख लेंगे, रिश्वत अगर देते हैं तो वो पोजीशन किसी को मिल जाती है, कोई स्कूल तक नहीं गया हुआ उसको कोई समझ नहीं है पर वो पार्लियामेंट का मेंबर बन के बैठ जाता है, लोग उसको वोट दे देते हैं। जब तुम्हें पता है कि ये सुफहा हैं तो क्यों उनको वो पोजीशंस देते हो? उनको नहीं दो वो पोजीशन, यानी जो उसके लायक नहीं है कि उस जिम्मेदारी को निभा सके। जैसे यहाँ पे वो हैं जो लोग इस माल को नहीं संभाल सकते तो कहा गया नहीं उनको दो, इसी तरह जितने भी महकमे हैं, जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल की पोजीशंस हैं, कोई वजारतें हैं, कोई कुछ हैं, जो उसका अहल है उसको ही दो, जो उसको जाया कर देगा उसके ऊपर तुम्हारा कयाम है, जो भी इदारा है, जो भी पोजीशन है वहां पे देखें, जो भी चला रहे होते हैं उसके ऊपर पूरी उस इदारे की वेलबींग का डिपेंडेंट होती है, अगर वो ऐसे लोगों को दे दी जाए तो फिर वो उसको जाया कर देंगे, इसलिए उनको नहीं देनी चाहिए। और दूसरा असूल यहाँ से भी आपको पता चल गया कि हर एक जगह पे जहाँ पे भी आप कोई फलाह का काम कर रहे हैं, ये भी एक नेकी का काम ही है ना, वो यतीम के लिए भाग दौड़ कर रहा है, उसकी चीजें देख रहा है, उसके मनी मैनेज कर रहा है, कभी अकाउंट से निकालने हैं, कभी रखने हैं, कभी कुछ करना है, तो एक टाइम तो उसका लगेगा, तो फिर क्या करे वो, पैसे ले इसके कि नहीं ले? अगर अमीर है तो फिर ना ले। फ़ाइदा दफा तुम इलैहिम वालम फअशहिदु अलैहिम, जब तुम देने लगो, जब वो बालिग हो जाए, तुमने देख भी लिया कि ये अपने पैसे आप खुद संभाल लेंगे, तो अब आप उसको देने लगे हो तो उस वक्त भी गवाह खड़े कर लिया करो कि गवाह हूं कि हाँ मैंने इसको देखो इतने थे इसके, इतने इसको मैं दे रहा हूँ आप लोगों की मौजूदगी में, ठीक है, ताकि कल को ये ना हो कि वो जाया कर दे इधर उधर पैसे, फिर आगे कहे इसने तो मुझे दिया ही नहीं थे, या कल को इस पे इल्जाम लगा दे मेरे माँ बाप तो इतना छोड़ के गए थे, इन्होंने तो बीच में से खा लिए, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इसमें, फिर ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से देखें, याद रखें कि ऐसा इंसान को ऐसी पोजिशंस नहीं लेनी चाहिए जो कि उनको पूरा ना कर सके, जो इस चीज में अकाउंटिंग में, हिसाब किताब में या ऐसी चीजों को नहीं चला सकते, वो लोग फिर ऐसी जिम्मेदारियां भी ना ले, क्योंकि अगर ले लेंगे तो उसके अंदर कोई मसले हो जाएंगे, तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये वो ही ले जो उसको निभा सकता है। वकफा बिल्ला ही हसीबा, ये याद रखना, तुम जितने मर्जी गवाह भी खड़े कर दो, खुद को सच्चा कर लो कि हम देखो पूरा पूरा दे रहे हैं और हमने कोई हेरा फेरी नहीं की और हमने देखो तुम्हारे सामने इसके हवाले कर दिया, तो उस काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला, ऊपर अल्लाह तो है ना, अल्लाह देख रहा है, तुम गवाह भी बना लो लेकिन ये याद रखना कहीं भी हेरा फेरी करोगे अल्लाह है हिसाब लेने वाला। फिर फरमाया लिरिजाली नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, मर्दों के लिए उनका हिस्सा है, एक फिक्स अल्लाह ने हिस्सा कर दिया जो छोड़ जाए उनके वालदेन और रिश्तेदार। अब ये भी आयत हमें ये बताती है असल में क्या होता था पहले जाहिलियत के जमाने में और आज के जमाने में, आज जाहिलियत के आज वाले जमाने में और पहले जमाने में ये होता था कि जब कोई मर जाता था ना तो उसकी जो बड़ी औलाद होती थी वो तो माल ले जाती थी, छोटे बच्चे महरूम रह जाते थे, औरतों को भी कोई कुछ नहीं देता था, या फिर जो चच्चा वगैरह ये वगैरह ले गए सारा कुछ और उसके बाद वो यतीम बच्चे देखते रह गए और फिर उनके लिए तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये बहुत कॉमन था। अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि इसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी के हिस्से करें कि इसको कितना हिस्सा मिलना है, अल्लाह ने खुद ही हिस्से कर दिए हैं, बस अल्लाह ने बता दिया कि किसका कितना हिस्सा है, अब वो मर्द है औरत है, करीब का रिश्तेदार है दूर का रिश्तेदार है, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, किसका कितना हिस्सा है अल्लाह ने फिक्स कर दिया है। अब एक औरत थी उम्मे कुज्जा उनका नाम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे दो लड़के हैं, इनके वालिद फौत हो गए और इनके पास कुछ भी नहीं है, तो अब क्या मतलब किया जाए, तो ये आयत नाजिल हुई थी। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हिस्से फिक्स हो गए और कौन छोड़ जाए, वालदेन और अकरबू, सारे रिश्तेदार नहीं, सारे रिश्तेदारों के हिस्सों में से किसी का हिस्सा जरूरी नहीं निकलता हो, बल्कि अकरब में यहाँ पे मुराद ये है कि यानी जैसे बेटा बेटी हैं या मियाँ बीवी हैं, ये बिल्कुल करीब के रिश्ते हैं, इनके हिस्सों में से हिस्सा बनता है, अगर बेटा बेटी में से कोई फौत हो जाए तो वालदेन का हिस्सा बनेगा, मियाँ बीवी में से तो कोई फौत हो जाए तो दूसरे फरीक का हिस्सा बनेगा, वालदेन में से फौत हो जाए तो बच्चों का हिस्सा बनेगा, तो वालदेन भी आ गया और अकराबून भी आ गया, इनसे तुम हिस्सा मिलना ही मिलना है और फिक्स है। वलिन निसाई नसीबो मिम्मा तरकल वालिदानी वल अकरबून, हालांकि अब अगर सिर्फ कह दिया जाता कि लोगों के लिए हिस्सा है तो वो काफी था, लेकिन अलग से निसा का बताया गया कि औरतों का भी हिस्सा है, लोगों सुन लो, ये नहीं कि औरत का कोई हिस्सा ही नहीं है, ये नहीं कि औरत को पहले जमाने में भी नहीं देते थे आज भी नहीं देते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, इसने क्या करना, इसको तो जहेज में हमने दे दिया था, इसको अब विरासत में क्यों दें, इनको तो हमने इतना पढ़ा दिया था, इनकी तो शादियों पे इतना खर्च कर दिया था। तो इस्लाम ने ये सारे जो जुल्म पे मबनी रस्म और रिवाज और तरीके और ये सब खत्म करके खुद ही हिस्से फिक्स कर दिए और बता दिया औरतों का भी हिस्सा है, जैसे मर्दों का हिस्सा है औरतों का भी हिस्सा है, और किसमें से मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा मतलब क्या, जो मरने वाला जो छोड़ के गया ना चाहे वो कलील है या कसीर है मगर उसमें हिस्से हैं, मर्दों के भी हैं औरतों के भी, इसलिए ये बात बताई जा रही है कि कसीर में तो समझ आती है, जैसे मैंने आपको भी बताया बड़ी जायदादें हैं घर हैं जमीनें, तो इनमें से तो कोई समझ सकता है, लेकिन कलील में से किसी को कुछ नहीं समझ आती, कोई पंखा है कोई बर्तन है कोई औरत फौत हुई है उसके कपड़े हैं, इसको कौन समझता है कोई कि ये भी कोई विरासत में तकसीम होने की चीज है, और हर के पास तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती लेकिन सबके पास कोई थोड़ा बहुत तो होता है, अब जिसके पास जमीनें जायदाद नहीं क्या उसका कोई भी नहीं विरासत होगी, उसकी भी होगी जो उसका था वो, आप सोचे ना एक इंसान जब मर जाता है ना तो ऑटोमेटिकली चाहे कोई डिक्लेयर करे या ना करे ऑटोमेटिकली उसके वारिस उसके माल के हकदार बन जाते हैं, वो माल उनका हो, हकदार क्या बन जाते हैं इसको छोड़े, वो माल उन वारिसों का हो गया, जो ही ये मर गया तो माल वारिसों का हो गया, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे उनको ओनरशिप दे या ना दे, उनकी मिल्कियत है ये माल, समझने, अब जो मर गया ना उसकी आप चीज नहीं यूज कर रहे, अब किसकी चीज है ये, अब इन ओनर्स की, अब ये आपने तकसीम नहीं किया लेकिन उनकी ओनरशिप है,
ये उनकी चीज है, इसमें से जो भी खर्च करेंगे आप, मसलन एक बंदा छोड़ के गया 1 लाख, अब वो मर गया ना, अब इस 1 लाख में से अगर आप कुछ लेंगे तो ये आप उसके पैसों में से नहीं ले रहे, वो तो बहुत हो गया, उसके तो जू ही आंखें बंद हुई उसका मिल्कियत खत्म हो गई, अब इसके मालिक इस 1 लाख के सारे वारिस हैं, जितने भी अल्लाह ने इसके वारिस बनाए हैं, इस आदमी के जाने वाले के जितने वारिस हैं वो इसके मालिक हैं, अब आप इसमें 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो आप उनके पैसों में से खर्च कर रहे हैं, और ये खयानत हो जाएगी अगर उनके पूछे बगैर आप खर्च करते हैं, समझ आई बात? नसीबम मफरूदा, ये हिस्से हैं मुकर्रर किए गए, मुकर्रर किए हुए, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, किसी इंसान ने नहीं, इसी वजह से अगर कोई इनमें से अपना हिस्से का मुतालबा करता है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि ये उसकी चीज है। अब वो कहते हैं ये तो कितना लालची है ना, देखो यार इसको शर्म नहीं आती कहते हुए कि भाई मुझे विरासत में से हिस्सा दो। अब कोई मर गया है तो पीछे जो उसकी तो हो गई वो चीज, वो अपनी चीज के लिए कह रहा है मुझे दे दो, तो कह रहे हैं कि नहीं देखो कितना लालची है, हालांकि अल्लाह ने उसको ये हिस्सा दिया है और इसको लेने में भी कोई शर्म नहीं करनी कि आए अगर हम ले लिया तो क्या कहेंगे लोग, या क्या इसने ले लिया हिस्सा, नहीं वो उसको हक अल्लाह ने दिया, और इसमें वारिस की अपनी मर्जी नहीं है मुझे कम क्यों मिला, उसको क्यों मिला, ज्यादा क्यों उसको दे दिया गया, नहीं जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया वो कानून है, वो अल्लाह ताला ने बता दिया तो उसके मुताबिक ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अमूमन इस मामले में क्या होता है, बेटियों को कहा जाता है आप माफ कर दो, या कोई झिझकता है या डरता है या दबता है, या बाज दफा ऐसे होता है कि अरसा ही गुजर जाता है उसको तकसीम ही नहीं किया जाता, या वो लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको कहते हैं वो तो पहले ही मालदार हैं इसलिए उनका क्या जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है हमें जरूरत है, हमें बस दे दो, या क्या करा जाता है, इतनी तरह की इसके अंदर ज्यादतियां होती हैं ना, या क्या किया जाता है कि उनकी मर्जी के बगैर ही उसमें से थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहे करते रहे करते रहे, और जब 10-12 साल के बाद उसको तकसीम करने का वक्त आया और सोच ही लिया कि चलो अब तकसीम कर देते हैं, अब हम चलो अब इस पोजीशन में आ गए कि अब हम तकसीम करें, तो वो अब चीजें ही आधी खत्म हो चुकी होती, कल्ला में से तो कुछ भी नहीं रह गया होता, कसुर में से हाँ थोड़ा बहुत जो होता है वो कर दिया जाता, कल्ला में कुछ नहीं कर किया जाता, उसको तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना, और इसमें खयानतें कितनी होती हैं, बाज दफा जो बेटे होते हैं वो सारे पे कब्जा करके बैठ जाते हैं कि अब ये तो हमारा ही है, अब हम क्यों बहनों को दें, क्योंकि अगर बहनों को दिया तो इनकी खानदानों में चली जाएगी ये जायदाद या ये पैसा, तो हम तो नहीं देते, जो देना था हमने दे दिया, वह हमारे माँ बाप ने दे दिया अब हमने नहीं, अब वो कब्जा कर लिया, इस तरह बेटियां कब्जे कर लेती हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी माँ की निशानी है, आए ये तो मेरा हो गया वो तो मेरा हो गया, बस करके सारा खुद रुसमालिया भाभियों को ना मिले, ये कड़े मेरी माँ को बड़े पसंद है ये तो मैं ही लूंगी, ये खयानत है, कयामत के दिन लानी पड़ेंगी ये चीजें, तो ये भी एक बहुत बड़ी खयानत की बात है। और इसमें देखें जो जूं ही मरने वाले की आंखें बंद हुई हैं उसके बाद कल्ला और कसुर जो भी उसकी मिल्कियत था वो सब एक जगह पे होना चाहिए और उसकी तकसीम होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो अगर वो एसी छोड़ के गया है तो वो एसी उसका था, अब आप एसी खूब इस्तेमाल किया आपने, आपने उसके बर्तन खूब इस्तेमाल किए, आधे तोड़ दिए आधे वो उनके रंग ही उड़ गए, एसी खराब हो गया, बाकी चीजें टूट फूट गई, फर्नीचर खत्म हो गया, जब सारी चीजें खराब हो गई तो फिर आपने कहा कि अच्छा अब हम बांटते हैं, और बाज दफा बेवा औरत को ताकीद की जाती है, लोग कहते हैं ना तू ना अभी बांटी, अगर तूने विरासत बांटी तो तेरे बच्चों ने तो तुझे पूछना नहीं फिर क्या होगा, तो वो मांटते ही नहीं, फिर उसके बाद वो उसी तरह रहता है, तो ये सारी ना इंसाफियां हैं। जो कि विरासत में होती। तो ये हुक्म जब आ गया कि अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए और कल्ला और कसुर में भी है हिस्सा सबका, तो फिर आप बताएं, यानी कल्ला और कसूर का मतलब क्या है? कलील, थोड़ी चीज भी है, मसलन उसके कपड़े हैं, उसकी कोई जो उसके पैसों का था, उसने कोई फर्नीचर लिया हुआ था, उसने उसकी गाड़ी थी, उसकी कोई उसने अपने कोई जेवर बना के रखा हुआ था, वो उसकी चीजें। और कसूर यानी ज्यादा, मतलब कोई बैंक बैलेंस है, कोई बंगले हैं, कोई जायदादें हैं, कोई बड़ी बड़ी चीजें हैं, प्लॉट हैं, कोई मतलब ज्यादा बड़ी चीज है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो कलील है ना, कम थोड़ी या कम वैल्यू की, तो उसको क्या समझा जाता है बताएं? इवन जो कपड़े वो उतारती है ना मुर्दे के ऊपर से उतारे गए, वो भी किसी का हक नहीं है कि उठा के खुद ही मैं सदका कर देती हूँ। अब बेटी है वो बड़ी हमदर्द है, नहीं मेरी माँ के कपड़े हैं, मैं तो इनको सदका करूंगी, गरीबों को दूंगी इनको। आप हाँ सारों से पूछे पहले उनसे, वो रसा से फिर आप उसके अंदर तसर्रुफ कर सकते हैं, फिर आप उसमें से वो चाहे वो सारे कहते हैं अगर के नहीं जी आप सदका ही कर दें, चलो हमारी माँ को सवाब मिलेगा तो फिर ठीक है आप कर दें। लेकिन आप खुद से उठ के, एक बहू या एक बेटी खुद से उठ के कहे नहीं जी मैं ये करने लगी हूँ, मैं वो करने लगी हूँ, नहीं कर सकते। वो सबका हक है, वो समझ लें सबकी मिल्कियत है। अब ये उसकी थोड़ी है चीज जो कि आप सदका कर रहे हैं, आपको क्या राइट है? अब तो सारे वारसों की है ये। अब वो सारे वारिस जब उस चीज को मानेंगे कि आप इसको सदका करें, तब कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इतनी मुश्किल बात नहीं है ये। वह इदा हदर अल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और जब हाजिर हूं तकसीम के वक्त। अब ऐसी कहां हमारी तकसीमें होती हैं कि भाई सारी चीजें जमा कर ली जाएं और फिर उसके बाद तकसीम किया जाए एक एक, यानी इतना तक है कि सुई भी जो है ना, सुई उसको भी तकसीम किया जाना है, सुई। और यहाँ पे तो बड़े बड़ी चीजें खा लेते हैं, वो घर चल रहे हैं उसके ही बैंक बैलेंस से, और सारा कुछ हो गया खत्म खुतम करके, कहीं कारोबारों में लगा लिए, किसी ने कुछ यूज कर लिया, बस कौन जाने भाई, साल 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 बाद कौन गिनती करता फिरता। लेकिन कहा गया सुई तक भी, वो भी विरासत है और वो वारिसों में बटेगी, बेवा में, उन 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 यतीमों में, या अगर बड़े भी हो गए हुए हैं तो उन उस औलाद में बटेगी, और वो अल्लाह ने आगे हिस्से बता दिए हमें। लेकिन हम खैर, हमें बहुत शौक है खुद हिस्से करने का ना, तो हम खुद ही हिस्से करके जाते हैं, मेरे पीछे से लड़ाइयां ना, तो फलाने को इतना दे देना, फलाने को इतना दे देना। वो आपको किसने कहा कि आपने हिस्से करने? आपको तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने हिस्से कर दिए। आगे हम आयत 11 पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने बता भी दिया किसने किसको कितना देना है। यहाँ पे क्या होता है, किसी का अगर एक बेटा और एक बेटी है ना, कहते हैं हाय बेटी है ना मेरी, इकलौती बेटी मुझे बड़ी प्यारी है, आधा बेटे को आधा बेटी को मैं इंसाफ करूंगी। अल्लाह ने कहा नहीं, बेटे को इतना मिलना है, बेटी को आगे आप आज पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने बराबरी करनी है बस, मैं तो बस मैं बेटी को कम नहीं दे सकती, ये नाजायज है। अल्लाह ने मुकर्रर हिस्से जो कर दिए हैं, आप उससे बढ़ के आगे जाना चाहते हैं? अल्लाह का कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं? हदूद तोड़ना चाहते हैं? अब यहां पर इस वाली आयत में क्या है, वो वाला टाइम आ गया कि भाई सारी फैमिली बैठी है और इस वक्त ना सारी चीजों का एक बंटवारा हो रहा है, एक इस्लामी फैमिली, हम सारे अपने आप को इस्लामिक तो कहते हैं लेकिन कहीं पे भी ये नहीं होता, लेकिन अब ये यहाँ पे इस्लामी फैमिली की मिसाल दी जा रही है। इस्लामी फैमिली बैठी है, उसने कहा है कि फिर फौत हो गया, उसकी सारी चीजें, सारी लिस्ट बनी हुई है, चलो इसको ये फलां को ये जितना अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए उसके मुताबिक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, मिसाल के तौर पे घर का सारा उनका जो सामान था, फर्नीचर था, उनके बहुत और एसेट्स थे, अब वो कैसे तकसीम करें, क्या करें, चादर इसको दें, एक सूट इसको दें, एक इस बेटी को दें, इसको करें, ऐसे करें? या तो वो कहते हैं नहीं, हम सारे कहते हैं इन चीजों को सदका कर दो, ठीक है फिर सबकी मर्जी है सदका कर दो, या वो सब कहते हैं कि देखो इसकी मालियत निकाल लेते हैं, ये फर्नीचर कितने का, ये फर्नीचर मसला है कि 50,000 का, तो 50,000 चाहे एक बच्चा कह के दे ले, अच्छा मुझे, या ये मेरी माँ का जो जेवर है ये इतने पैसों का। अब एक बेटी कहती है अच्छा मैं इतने पैसे दे देती हूँ बाकी वारसों को, और बजाय बाहर क्या बेचना, मुझे बेच दो इसको, फिर ठीक है, अदरवाइज उसकी कीमत लगाई जाए, जितनी भी कीमत बाहर लगनी है, मसलन मैंने आपको कहा 50,000 है, 50,000 कीमत लगा के, और उसके बाद उन में से जितने शेयर जिसका निकलता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उसके शेयर्स बताए हैं, उस मुताबिक उस 50,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है? या कीमत ही वैल्यू, मसलन है सोफा 10,000 का,
डाइनिंग टेबल भी 10,000 की है, तो एक 10,000 की चीज इसको दे दी, अगर दूसरे भाई को दूसरी 10,000 की चीज दे दी, इस तरह से करके, मतलब जिस तरह अल्लाह ने हिस्से बताए हैं उस तरह से उसको तकसीम किया जाए। अब इसमें कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत कि घर का सामान कैसे होगा या बड़ी चीजें उसकी तो होती हैं वो कैसे होंगी, ये भी पूरे बैठ के करने का काम है, जो कि हमें इसलिए नहीं आता कि आज तक ना हमने होता देखा तो ना हमने कभी इस चीज को अपने खानदानों में, अपने माशरे के अंदर किसी को इस पे बात करते हुए भी सुना। तो जब इस तरह से सारे बैठे हों तो उस वक्त आप देखें, एक मैयत वाला घर है उसके अंदर रिश्तेदार भी आएंगे, और आपको पता है कि ये काम जल्दी ही होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं है कि अभी तो हम सोचेंगे देखेंगे, अभी तो कितने साल गुजर जाए पहले उसका गम हल्का होगा, इनको पहले विरासतों की पड़ गई हैं, देखो ये कितने लालची हैं और ये आ गए हैं लेने के लिए और विरासत का कह रहे हैं बांटो। नहीं, जब कोई फौत हो तो क्या किस तरह से चीज होगी वो आगे अभी बात आएगी, लेकिन अब जब वो बैठे हुए हैं तो उस वक्त रिश्तेदार भी आ गए हैं, अब कमरे लॉक करके तो नहीं बीच में बैठ के ये कर सकते, ये भी लंबा भी काम है, तो अब क्या होगा, वो यतीम है कहीं, मिस्कीन है कहीं, आपके हमसाए में कोई मिस्कीन रहता है, कोई के लिए के हालात अच्छे नहीं है, हैंड टू माउथ है, वो भी अब हमसाए भी आके बैठे हुए हैं, कहीं और यतीम भी आके बैठे हैं, तो अब इस वक्त क्या करें, तो वो भी देख रहे हैं सारों को मिल रहा है, तो अब क्या है, सबकी रजामंदी से उनको भी उसमें से कुछ दे दो, फरसुकूहुम मिन वकूलू लहुम कौलम मारूफ। अब कोई उनके अंदर से कुछ ऐसी बात कह देता है, नहीं जी हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए, हमने तो इनकी बड़ी खिदमत की है, ये तो नहीं, वो कोई भी बात करते रहेंगे भले तरीके से उनको जवाब, उनको भी ऐसे नहीं बस बस ये समझ लो कि हमने तुम्हें इतना भी दे दिया ना बड़ा, इतना भी तुम्हारा हक नहीं बनता था, ये वो बातें सुना दी उसको, और ये नहीं, लेकिन कितनी कौले मारूफ की बात कितनी आ रही है ना, कि आप जब उनसे भी बात करो जो बेवकूफ हैं तो कौले मारूफ करो, यानी बेवकूफों के साथ भी ऐसे नहीं कि बदतमीजी पे उतर आए, इसलिए कि उनको समझ नहीं है तो आप उनके लेवल पे चले जाए, इसी तरह कोई नाजायज बात भी कर रहा है तो उस वक्त भी आप कौले मारूफ नहीं छोड़ना आपने। अच्छा, एक और ज्यादती की बात रह गई यहाँ पे मेंशन करना, बाज दफा लोग कहते हैं हमारे इस बेटे ने हमारी बड़ी खिदमत की है लिहाजा हमें इसको बस देना है, बाकी को तो हमें पूछते ही नहीं थे, ये आपने नहीं फिक्स करना, ये अल्लाह ने आपको नहीं दिया कि किसने आपकी खिदमत ज्यादा की है तो आपने उसको दे दिया और दूसरों को आपने नहीं देना, या किसी को आपने आग कर देना है क्योंकि उसने हमसे बड़ी बदतमीजी की थी, नहीं, ये अल्लाह ने कानून फिक्स कर दिया, नसीब है ये, नसीब नसीब मफूदा, नसीब समझते हैं ना, फिक्स हिस्सा, वैसे भी हम कहते हैं ना ये इसका नसीब था तो वो उसका नसीब है समझ लें। وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ये आयत इतनी प्यारी है ना, इतनी खूबसूरत आयत है ये, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको जो के चाहे वो यतीम के जो वो रसा थे, जो औलिया थे उसके, या कोई भी पीछे से जो विरासत बांटने वाले हैं, कोई भी पीछे जो रह जाने वाले हैं, उनको कहा जा रहा है कि डरो, डरे वो लोग, कौन लोग, मैंने बताया ना कि जो या तो उनके औलिया हैं या और लोग जो पीछे रह गए हैं, उनके कफील हैं, उनके विरासत के माल को तकसीम करने वाले हैं, वो डरे किस बात से, लव तरकु मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दियाफन खाफू अलैहिम, सुबहान अल्लाह, वो ये डरे कि अगर वो छोड़ जाएं अपने पीछे ऐसे बच्चे, जैसे अब ये बंदा छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पेड ऑफ नहीं है, वो बेचारे किधर जाएंगे, अब किधर रहेंगे, क्या करेंगे, तो उस वक्त जब तुम उसकी मैयत पे खड़े हुए हो ना, तो तब तुम सोचो, डरो इस बात से, लव तरकु, अगर वो छोड़ जाए, अगर तुम खुद छोड़ जाओ अपने पीछे इस तरह की कमजोर औलाद, तो तुम उसकी कितनी फिक्र करोगे, खाफू अलैहिम, तो वो डरते रहेंगे उनके बारे में कि हाय हमारे बच्चों का हमारे पीछे से क्या होगा, तो तुम अपने आप को रख के यानी सोच लो कि ये बंदा नहीं दुनिया से गया, अगर मैं दुनिया से इसकी जगह मैं चला गया होता तो मेरे बच्चों का क्या बनता, मैं उनकी कितनी फिक्र कर रहा होता, खुद के ऊपर तारी करो इस चीज को, आज अगर ये यतीम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ना, तो और ये पिछली आयत के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें कि वो यतीम भी आए हुए, मिस्कीन भी आए हुए, उनका कोई हिस्सा नहीं बनता है, ये वो वाले रिश्तेदार हैं जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है, मसलन है कोई भांजा है, कोई भतीजा है, इनके अब नहीं है, या कोई चचा वगैरह भी है, अगर उसका नहीं हिस्सा बन रहा इस वक्त इसमें, हर जगह पे चचा का हिस्सा नहीं बनता, चचा है, कोई मामू है, कोई खाला आ गई है, कोई बेचारे, कोई मिस्कीन भी है, या मिस्कीन नहीं भी है, सिर्फ रिश्तेदार है, बस वो देख रहे हैं इस वक्त कि चलो हमें भी कुछ मिल जाए। तो आपने अगर उस यतीम को दे दिया तो उसको झिड़को ना, चाहिए कि डरे डरे इस बात से कि कल को वो भी अपनी औलाद ऐसे छोड़ के जा सकते, तो फिर क्या होगा। तो जब यतीम को देखो इंसान को, ये सोचना चाहिए, सोसाइटी के सारे ही लोगों के लिए ये बात है, पैगाम। जब ऐसे महरूम बच्चों को देखो जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो, तो अपने आप को रख लिया करो कि मेरे भी बच्चे हैं, अगर मैं कल को चली जाऊं तो फिर मैं कितनी डरूंगी अपने बच्चों के बारे में, इनका क्या बनेगा, ये सोच के उनके साथ मामला करना। अल्लाह अकबर, फल यत्तकुल्लाह, कितना जबरदस्त अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, किस तरह इंसान को खड़ा करके वहां पे दिखा दिया, इंसान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, फिर पसीने आने लगते हैं कि हाय वाकई अगर मेरे बच्चे इस जगह हो तो क्या हो। अपने बच्चों को वहां पे खड़ा करो, अपने बच्चों को इनकी जगह पे देखो और खौफे खुदा करो इनके बारे में, फल यत्तकुल्लाह, क्योंकि इंसान का डर नहीं आता जब तक इस तरह से नहीं इस चीजों को सोचता। वलयकूलु कौलन सदीदा, फिर बात करो वो जो स्ट्रेट हो, ऐसी बात करो जिसमें कोई ऐसी पेचोताब, कुछ ऐसी कोई ऐसी चीजें ना हो कि कुछ डिफरेंट ही माना उसका निकला है, कोई ऐसी बात जो को डबल माने रखती हो, क्या उसको कुछ दिया, उस बेचारे को हर्ट हो गया, उसने कुछ और समझ लिया, नहीं, स्ट्रेट बात करो, सीधी बात। देख लें अब यतीमों का माल खाने के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें हमेशा इंसाफ पर कायम रखे। और यहाँ हमें पता चल गया कि देखिए रिश्तेदारों का भी कितना हक है, यतीमों का कितना हक है, फअम्मल यतीमा फला तकहर, यतीम को डांटना नहीं है नबी, यतीम के बारे में भी अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, मिस्कीन, मिस्कीन के साथ भी वो मिस्कीन है, वो चाहे नहीं उसका हक भी नहीं बनता, फिर भी उसको दे दो, मिस्कीन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ेल अल खैरात व तरक अल मुनकरात व हुब अल मसाकीन, है अल्लाह मुझे दे, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों की तौफीक और तरक अल मुनकरात जो गुनाह है ना उनको छोड़ना की तौफीक, और हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मिस्कीनों से हमदर्दी मोहब्बत रखना, इसकी इसका सवाल करता हूँ, सुभान अल्लाह। और रिश्तेदारों के मे को दे देंगे अगर उसके माल में से मरने वाले के, तो उसकी तरफ से भी एक सदका हो गया, चलो उसकी आखरत भी कुछ समर जाएगी। और यतीम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कोई शायद इससे डरना ही ना शुरू हो जाए कि हाँ ये फिर तो बाबा हम नहीं यतीम को घर पे लाते, हमसे कहीं ज्यादती ना हो जाए, हमसे कहीं ये ना हो जाए, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यतीम की किफालत करने वाला है ना, क़यामत के दिन मैं और वो ऐसे होंगे अपनी दो उंगलियां मिला के दिखाई, मिला के दिखाई अपनी दो उंगलियां कि देखो ऐसे मैं और वो होंगे, यतीम की जो किफालत करता है, कितनी बड़ी ये नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, अल्लाह अकबर। और फिर वो जो यतीम का माल खा ले लेकिन फिर गुनाह भी देखें, इन अल्लदीन यकुलून अमवाल यतामा जुल्मन इन्नमा यकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो जो यतीम का माल खा जाते हैं जुल्म के साथ, एक तो वो होता है ना कि अगर वो फकीर था वो तो उतना उसको लेने की इजाजत है कि वो अपनी तनख्वाह के तौर पे ले सकता है, वो तो हमने बात कर ली ना, लेकिन जो जुल्म नाहक कर रहा है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, आग। और मैंने आपको यह हदीस सुनाई है ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे क्या देखा था, इस तरह ही कि उनके पेटों में पत्थर डाले जाते हैं, नहीं दुनिया के अंदर तो वो पैसे नजर आ रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन वो अपने पेट में आग डाल रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन ऐसे लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, इनके मुंहों से आग के शोले भड़क रहे होंगे, आग उनके मुंहों से निकल रही होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह वो कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसे होगा, आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग यतीम का माल जुल्मन खाते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, वो आग उस दिन जाहिरन शक्ल में आ जाएगी, आज नजर नहीं आ रही ना, वो उस दिन जाहिर ही हो जाएगी। इब्ने जरीर और इब्ने अभी हातिम ने, ने सुदी से रिवायत की है कि जो शख्स यतीम का माल जुल्मन खाता है, जब वो क्यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके मुंह, उसके कानों, उसके नाक और उसकी आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, और हर शख्स देख के पहचान लेगा ये यतीम का माल खाने वाला है। देखें हम, और इसी तरह आप जिस बंदे के इतनी जगहों से आग निकल रही है उसका हाल क्या होगा सोचें। वो अपने पेटों में आग डाल रहे हैं, फसा वस यस लऊ ना साईर और करीब वो दाखिल होंगे भड़कती हुई आग में। तुम ये ना सोचना कि आज दुनिया में तुम इनके माल खा जाओगे, किसने पूछना है कौन इनका वाली वारिस है, कौन मुकदमे लड़ेगा इनके लिए, कौन क्या करेगा, छोड़ो हम कब्जे करके बैठ जाएं। तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे इस यतीम के साथ अल्लाह खड़ा हुआ है। अगर ये आयतें पहुंच जाए हमारे माशरों में, हमारे लोगों में, तो मुझे बताएं हमारे माशरों में कोई ऐसा हो सकता है जो कि फिर भी यतीम का माल खा ले? कोई ऐसा हो सकता है बताएं? इतनी सख्त आयतों को सुन के अल्लाह अकबर। इसी तरह इस आयत के शाने नजूल में आता है कि जंगे उहद के बाद सईद साद बिन रबी की बीवी अपनी दो बच्चियों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये साद की बेटियां हैं, इनके वालिद आपके साथ उहद में शरीक हुए थे, वो वहाँ शहीद हो गए, तो इनके चचा ने इनका सारा माल ले लिया। मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस जमाने में ऐसे होता था, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो इनसे माल के बगैर कौन शादी करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह खुद फैसला करेगा। और ये आयत मीरास नाजिल हुई थी, फिर और फिर ये नाजिल हुआ कि जो ऐसा करेगा वो फिर अपने पेटों में आग भर रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किस तरह से जो बेटियां उनको उनका हिस्सा और बेवा को उसका हिस्सा दिया जाए और बाकी फिर चचा का हिस्सा होगा, क्योंकि अगर एक आदमी की सिर्फ बेटियां होती हैं तो फिर उसके लिए ऐसे ही है। यूसीकुम अल्लाह फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। यानी इंसान तू क्या अपने औलाद का बड़ा समझता है कि मैं अपनी औलाद की जितनी हमदर्द हूँ कोई और नहीं है हमदर्द, और मैं तो इतना इसको दूंगी और इतना इसको दूंगी। नहीं, अल्लाह तुमसे ज्यादा उनका हमदर्द है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद खुद उनके बारे में वसीयत फरमाई है। वसीयत मतलब क्या? ताकीदी हुक्म, ताकीदी हुक्म, समझ आई ना? अल्लाह ने ताकीद की है इस हुक्म को देते हुए। सिर्फ खाली अल्लाह का तो हर हुक्म ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो कह दे ताकीद के साथ ये हुक्म दे रहा है अल्लाह। और आगे आप देखेंगे विरासत के सारे अहकाम, आप ये भी देख लें कि हम कितना इसके मुताबिक विरासत को बांटते हैं। इससे पहले आपको एक हदीस बता दूं, बुखारी और मुस्लिम में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक्कास के पास उनकी बीमारी के जमाने में उनकी इयादत के लिए गए, तो हजरत साद ने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास माल बहुत है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो मेरे पीछे है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने माल की 2/3 अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। यानी अब उनको पता है, उनको लग रहा था कि मैं अब मरने लगा हूं, तो अब मैं 2/3 सदका कर देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, उनने कहा फिर 1/3 आप की इजाजत दे दी। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन ये भी ज्यादा है, अगर तुम अपने वारिसों को पीछे मालदार छोड़ के जाओ, वो इससे बेहतर है कि तुम उन्हें फकीर छोड़ के चले जाओ कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरे। यानी जब इंसान मरने लगता है तो वो ये सोचता है अब मैं जल्दी जल्दी सारा सदका कर दूं, इधर दे दूं इधर दे दूं, क्योंकि अब तो मैं बिल्कुल आखिरी दमों पे हूं, किसी वक्त मेरी जान निकल जानी है, छोड़ो मेरे बच्चों को क्या मिले, मैं तो खुद यहाँ पे चैरिटी करो वहां करो। वो उस वक्त नहीं करो चैरिटी, उस वक्त वो पीछे से उनको ये छोड़ जाओ कि वो बाद में लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, ये भी नेकी है। कि अगर वो मोहताज होंगे, वो लोगों से मांगते फिरेंगे, माँ बाप अमीर थे वो सारा अस्पतालों में और इधर उधर चैरिटीज में डाल के चले गए, और बच्चे पीछे जो है वो मांगते फिरते हैं लोगों से, ठीक है? तो ये भी सही नहीं है। और ये भी पता चल रहा है ना कि अल्लाह ताला कितने इस बारे में फर्म अहकाम दिए। ऐसे नहीं है कि बस सिर्फ बात एक करनी दी गई के कमाते, पहले बताया अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, ये किसी और की बात नहीं है। अब तुम इसको काटोगे, इस इन हुक्मों को तोड़ोगे तो किसका किसकी वसीयत को तोड़ोगे? किसी इंसान की नहीं है, अल्लाह ताला की बात है। तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वालदैन को कहा जा रहा है ये बात, नहीं ऐसे नहीं करना। हजरत साद से कहा गया नहीं आप अपनी बेटी के लिए छोड़ें इतना। للذكر مثل حظ الأنثيين. अब आप लोगों को हमने एक टेबल है इसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया, जब आप इस टेबल को इंशाल्लाह खोल लेंगे तो ये सारी बातें ना एक टेबल में डाल दी गई हैं, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसका प्रिंट लेके अपने नोट्स में भी आप साथ लगा लीजिए। अब ये आयत और आयत नंबर 12 और सूरह निसा की आखिरी आयत समझ लें कि इसमें सारी विरासत के अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह इतनी हिकमत है, सारी विरासत के कानून इसके अंदर आ गए। और आप हैरान होंगे जब आप विरासत को पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को कि कैसे समो दिया अल्लाह ने इतनी बड़े बड़े हिसाब किताब को सिर्फ 3 आयतों के अंदर। ये सिर्फ 3 आयतें हैं जिनके अंदर ये हिस्से बांट दिए गए। लिद्दकर मिथलु हद्दिल उन्था नहीं आई, लड़के के लिए बेटा है या बहन भाई के अंदर तकसीम हो रही है तो ऐसे होगा कि लड़की के को हाफ मिलेगा, लड़के को डबल मिलेगा, यानी लड़के के 2 हिस्से लड़की का 1 हिस्सा, लड़के के मानिंद हिस्सा 2 लड़कियों के, यानी 2 लड़कियों को जितना मिलना है उतना 1 लड़के को मिलेगा। ये समझ आ रही है बात? अगर मिसाल के तौर पे 4 रुपए हैं तो लड़की को एक लड़की को 1 रुपया, एक को 1 रुपया, और लड़के को इन दोनों के 2 लड़कियों का जितना हिस्सा है उतने, 2 लड़कियों को कितना मिला टोटल, टोटल बताएं 2 रुपए ना, तो ये 2 रुपए इस लड़के को मिलेंगे, ठीक है ना, बेटा और बेटी के। यानी जब आप मिसाल के तौर पे किसी की 3 बेटियां 2 बेटे हैं तो वो अब किस तरह से इसको तकसीम करेगा, यानी जो 2 लड़के हैं उनके हिस्से को डबल कर लिया जाए, 2 लड़कों का हिस्सा डबल किया जाए तो क्या मतलब, 2 एक के 2 दूसरे के, तो 4 हो गए, और 3 लड़कियां तो उनको 1 एक हिस्सा मिलना तो 7 हो गए, तो 7 हिस्से करेंगे, 7 हिस्सों में से 4 हिस्से दोनों बेटों के और 1 एक हिस्सा लड़कियों का। इस तरह आप बाकी भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फक इन कुन्ना निसा अन, अब किसी की सिर्फ बेटी ही है, अब पहले आपको बता दिया बेटे और बेटियां अगर किसी के हैं तो कैसे हिस्से करने। अगर किसी इन कुन्ना निसान फौकसनता ही नहीं, अगर किसी की सिर्फ बेटियां हैं और 2 से ज्यादा बेटियां, 3 बेटियां मसलन किसी की हैं, फलहुन्न सुलुता मातरत, तो उन बेटियों को कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 2/3 आप उसमें से निकाल लेंगे, पूरी जायदाद, सिर्फ जायदाद नहीं, मैंने कहा कल्ला और कसूर, सारा जितना भी उसने विरासत छोड़ी है उसमें से 2/3 निकाल के और सारी बेटियों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। हर बेटी को 2/3 नहीं, 2/3 टोटल निकालेंगे और इन सारी बेटियों में तकसीम कर देंगे। वह इन कैनत वाहिदतन फलहन निस, और अगर सिर्फ इकलौती 1 बेटी, जैसे मैंने हजरत साद की अभी आपको मिसाल बताई है कि इकलौती बेटी है उसके अलावा कोई औलाद नहीं है, तो उस बेटी को आधी जायदाद मिलेगी, ये नहीं होगी कि पूरी की पूरी मिल जाएगी, आधी मिलेगी, उसका कोई बहन भाई नहीं था। अच्छा अब देखें, वली अब वही ही, अब माँ बाप को भी हिस्सा मिलना है, वली अब वही ही और वालिदैन, लिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस, उनमें से हर एक को 1/6 हिस्सा मिलेगा, 1/6 हिस्सा मिलेगा हर एक को, यानी माँ को भी 1/6, बाप को भी 1/6, ऑन विच कंडीशन, किस कंडीशन में, मिम्मा तरका, उसमें से जो छोड़ गया मरने वाला, किस कंडीशन में, इन, इन से कंडीशन शुरू हो रही है, इन काना लहू वलद, अगर उस मरने वाले की औलाद थी, औलाद भी थी और वालदेन भी हैं, ठीक है, अब वो दुनिया से चला गया, वालदेन अभी जिंदा है तो औलाद का नहीं, यहाँ पे वालदेन का भी हिस्सा बताया जा रहा है, तो वालदेन जिंदा है तो माँ को भी 1/6 मिलेगा, बाप को भी, अब यहाँ पे तो पूछा ही नहीं जाता ना, अगर वालदेन जिंदा भी है तो वालदेन को किसने देना, बस सारा का सारा वो बच्चों को दे दिया जाता है, हालांकि उनके उस मरने वाले के वालदेन अगर जिंदा है तो उनका हक क्या है, वो उनको मिलना है, ठीक। फइन लम यकुल लहू वलद, लेकिन अगर मरने वाला बे औलाद था या नौजवान था, अभी उसकी शादी नहीं हुई, वारिसहू अबवाहू, और उसके वारिस उसके पास वालदेन है, फली उम्मिह थुलुस, तो उसकी माँ 1/3 लेगी, माँ को पहले कितना माँ को मिल रहा था जिस वक्त मरने वाले के बच्चे थे, 1/6, अब माँ को कितना मिल रहा है अगर मरने वाले के बच्चे नहीं है, 1/3, और बाप को फिर कितना मिलेगा, बाप का सवाल होगा, बाप का तो यहाँ पे बताया ही नहीं, तो बाप को अब जो रिमेनिंग होगा वो बाप को मिल जाएगा, सारा का सारा वो असबा बनेगा, जिन्होंने विरासत का लिया है कोर्स उनको ये बात आराम से समझ आ गई होगी, जिन्होंने नहीं लिया वो ये समझ लें कि 1/3 माँ को तो 2/3 बाप को मिल जाएगा। इन काना लहू इखवातुन, और अगर उसके बहन भाई भी हैं, मरने वाले की बात हो रही है, मैयत की कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, मरने वाले के अगर बहन भाई हैं, फली उम्मी हिस्सुदुस, तो अब भी माँ को सुदुस ही मिलेगा। पहले मरने वाले की औलाद नहीं थी, तब भी सॉरी औलाद थी तब भी माँ को सुदुस मिला था 1/6, और अब भी जब मरने वाले के बहन भाई हैं तो तब भी माँ को सुदुस मिलेगा, और फिर बाकी बाप को भी मिलना है और बहन भाइयों को भी मिलेगा। मिम बादी वसीयत यूसी बिहा औदैन, इसके बाद के वसीयत पूरी कर ली जाए और कर्ज अदा कर दिया जाए। ये वाली बात थी जो मैं आपको पहले बता रही थी कि जब कोई मरता है तो उसके बाद सबसे पहले उसके माल में से एतदाल के साथ तजहीज व तकफीन का खर्चा निकाला जाएगा। ये नहीं कि हमें जी फलां जगह पे कब्र चाहिए, वो जो इतनी महंगी है वो हम लेंगे, और इसके बाद गाड़ी भी, वो जो जनाजा लेके जाएगी वो भी फलां गाड़ी होनी चाहिए, और इतना महंगा हर चीज में किया जाए, नहीं, एतदाल के साथ उसके माल में से सबसे पहले उसका कफन दफन का इंतजाम किया जाए। ये मरने वाले के माल में से होना चाहिए, अनलेस कोई सदका करना चाहिए, इसके ऊपर तो अलग बात है। बाज लोग अपनी जिंदगी में भी अपनी कब्र लेके रख लेते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, अपना कफन लेके रख लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो अपने उसके माल में से मरने वाले के पहले, सबसे पहले, किसी को नहीं अभी कुछ देना, सबसे पहले उसका हक तो है ना, वो जा रहा है दुनिया से, तो वो कम से कम इसके जो तजहीद तकफीन जो है वो तो उससे हो ना, तो वो करी जाएगी। उसके बाद नंबर 2, अगर देखा जाएगा उसके ऊपर कोई कर्जा है तो उसका कर्ज अदा किया जाए, जिस पूछ लिया जाए किसी का कर्जा इसने देना है, थोड़ा या ज्यादा है, वो उसका कर्ज अदा किया जाए, क्योंकि इंसान अपनी कर्ज के साथ मुअल्लक रहती है, उसकी रूह, इंसान के लिए उसका कर्ज अदा करना जरूरी है, तो उसका कर्ज इस उसके पैसों में से अदा कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कर्ज में फिर अगर मेहर नहीं उसने अदा किया हुआ तो मेहर अदा किया जाए। अच्छा जी, अब थर्ड थिंग कि उसने फिर जो वसीयत की है, अब वसीयत 1/3 से ज्यादा की नहीं वसीयत कर सकते। कोई भी मरने वाला अपनी जिंदगी में, मैं अगर लिख के जा रही हूँ अपनी वसीयत, तो मैं कहूंगी मैं अपनी पूरी जितना मेरा एसेट है उसमें से सिर्फ मैं 1/3 को कह सकती हूँ, फलां जगह दे देना, फलां चैरिटी को दे देना, अस्पताल को दे देना, मदरसे को दे देना, इसको दे देना, उसको करना, वो मैं 1/3 कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती जब मैं मर जाऊं मेरी सारी जायदाद बस फलानी को वक्फ कर दी जाए, वो वक्फ करनी, आपने अपनी जिंदगी में जो भी करना है करें अपनी चीजों का, लेकिन आप मरने के लिए अपनी वसीयत में नहीं ये लिख के जा सकते कि मैंने बस सारा वक्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वो अल्लाह के रास्ते में देना पूरी जिंदगी नहीं ख्याल आया, अब जिस वक्त वारसों की बनने लगी है तो अब आपको अल्लाह के रास्ते में याद आया, तो ये नहीं करना, ठीक है। और नंबर 2, वसीयत जो है वारसों के हक में नहीं की जा सकती, जिनका यहाँ पे हिस्सा बताया जा रहा है ना, जितने वारिस होंगे जिनको हिस्सा मिलना है उनके हक में नहीं की जा सकती, वारिसों के अलावा की जा सकती है, मसलन किसी की खाला है, कोई किसी की, मैंने बताया ना भांजे भतीजो, इनका विरासत में हिस्सा नहीं होता, अक्सर नहीं इनको मिलेगा, ठीक है। तो जिनको नहीं मिल रहा उनके हक में तो वसीयत की जा सकती, जिनको मिल रहे हैं, अब वो मिल रहा है बेटे को, एक को मिल रहा है, लेकिन और मेरा दिल चाहता है इसने खिदमत बहुत की तो इसको दो, नहीं ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो वसीयत वसीयत यूसी भी है औ दैन, जो उसके वसीयत जो पूरी करनी है, या कर्ज, ये इजमाए उम्मत है, तमाम उलमा का इस पे इजमा है कि पहले तजहीद तकफीन होगी, फिर कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी, और फिर उसके बाद विरासत बांटी जाएगी, फिर विरासत का हिस्सा आता है, ठीक है। अच्छा, आबा उकुम व अबना उकुम ला तदरुना अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा, अब इंसान कहता है मेरे तो बच्चों को ज्यादा जरूरत है, मेरे माँ बाप ने क्या करना है, उनका बुढ़ापा है, उनको क्या इस वक्त जरूरत है, लो असल तो मेरे बच्चे तो वो ज्यादा, उनकी इस वक्त काम, इतने जिंदगी के पढ़ाइयाँ शादियां उनकी सब होनी है, तो माँ बाप को क्या चाहिए, उनको क्यों मिलना चाहिए, उनको तो मिलना ही नहीं चाहिए, और अक्सर नहीं देते, आपने देखा है कोई चीज भी नहीं पूरी करते, मतलब अक्सर नहीं देते का मतलब क्या, यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं कि किसका हिस्सा भी है किसी का, तो बताया गया तुम्हें क्या पता, ला तदरुना अय्युहुम अक्रबु लकुम नफा, तुम्हें क्या पता किसको देना तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो, तुम्हारे लिए फायदामंद साबित हो, इसलिए ये ना कहो इनको क्या जरूरत है, उनको क्यों दे, बल्कि अल्लाह ने जो कानून रखा है ना, जो मुकर्रर किया हिस्सा, उसमें कोई हिकमत है, फरीदा तमिन अल्लाह, ये फरीजा है अदा करना अल्लाह की तरफ से, और देख लें आज कितने फरीजे टूट रहे हैं, ये कोई इंसानों के बनाए हुए हमारे ऊपर फर्ज नहीं किए गए, हर वालदेन, हर जाने वाला ये सोचता है कि मैं नहीं अगर हिस्से करके जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या हमारा ये काम है कि हम ये बस कहें कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में हिस्से बता दिए उसी के मुताबिक मेरी विरासत बांटी जाए, ताकि इंसान के खुद के ऊपर तो ना हो कोई ब्लेम अल्लाह के हाँ, और खुद इसके अंदर इंटरफेरेंस की कोशिश ना की जाए कि फेवरेटिज्म किसको देना है किसको नहीं देना, इसने मुझे नाराज किया इसने मुझे राजी किया, इसने खिदमत की इसमें नहीं खिदमत की, उनको नहीं चाहिए इसको नहीं चाहिए, खुद ये नहीं हम फैसला कर सकते। हाँ उनको दे दिया, अब उसके बाद वो जिसको मर्जी दें, उनकी मर्जी है वो सदका खैरात करें किसी पे खर्च करें, हम ये हमारा नहीं काम। इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, क्यों कह दिया गया यहाँ पे अलीम और हकीम की क्यों आई सिफात, कि तुम समझ लो तुम्हें अकल नहीं, उस तरह अल्लाह को इल्म है, अल्लाह के पास हिकमत है, उसने अपने इल्म और हिकमत के जरिए ये अहकामात दिए हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम इनको बदल दो या इनको तोड़ो या खुद सोचो कि मैं इससे बेहतर फैसला ला सकती हूँ, ये अल्लाह ने हिस्से रख दिए हैं। तो ये थी आज की आयात और उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं कोई बात समझ आई तो आप इस टेबल को देखिएगा इंशाल्लाह इसमें से समझ आ जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما